ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। भारत और कतर ने व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया और दो समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने, दोहरे कराधान से बचने और आय की राजकोषीय चोरी की रोकथाम से संबंधित हैं। इस बीच वार्ता से अलग दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, सहयोग बढ़ाने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कतर के बीच भविष्य की साझेदारी स्थिरता, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और ऊर्जा के क्षेत्रों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि व्यापार और व्यवसाय में बड़े बदलाव हो रहे हैं। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 562 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब को 225 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 244 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर में पुलिस, जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है, जिससे नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण नक्शा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से संपत्ति का मानचित्रण होगा और संपत्ति अभिलेखों को दुरुस्त करने में बहुत मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार ने सरकारी वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने नई दिल्ली में नियमावली का शुभारंभ किया। श्री प्रसाद ने विश्वास व्यक्त किया कि यह महत्वपूर्ण पहल देश के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करेगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स में 346 नए पदों के सृजन और छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्रिमंडल ने सांगली जिले में सिंचाई योजना की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए 15 अरब 94 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1,08,197 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक कल होने की संभावना है। बैठक में पार्टी के सभी निर्वाचित विधायकों सहित वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। ये इंडियाज गॉट टैलेंट पर उनकी हालिया अनुचित टिप्पणियों के दौरान देश भर में उनके खिलाफ दायर कई प्राथमिकी के संबंध में है। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम का सामना आज शाम 5:15 बजे से स्पेन से होगा। वहीं भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे जर्मनी से होगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियन का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।